अपनी मॉम से कॉल पर बात कर रहा था। वो उनसे किसी से अपना हक मांगने की बात कर रहा था। पार्थ के बैकग्राउंड से साफ था कि उसे पैसों की कमी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी बात यहाँ हक की थी, जो वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहता था। कॉल पर दूसरी तरफ उसकी माँ थी। उसने उसे हल्का डांटते हुए कहा, लेकिन मैंने हमेशा उनसे तुम्हें छुपाकर रखा था। वो तो ये तक नहीं जानते हैं कि उनका कोई बेटा भी है। जानते तो वो अपने बड़े बेटे के बारे में भी नहीं थे, लेकिन फिर भी पता चलने पर उन्हें उनका हक मिला ना मॉम। मुझे वो प्रॉपर्टी डोनेट ही क्यों ना करनी पड़े, लेकिन मैं अपने राइट्स छोड़ने वाला नहीं हूँ, पार्थ ने सख्ती से जवाब दिया। वो आगे कुछ कहता उससे पहले उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी, जहाँ पर इशिका खड़ी न जाने कब से उनकी बातें सुन रही थी। पार्थ ने एक नज़र उसे घूर कर देखा और फिर कॉल पर दबी आवाज़ में कहा, घर पर आकर बात करते हैं मॉम, ये मेरा आखिरी डिसीजन है, तो बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। बेहतर होगा कि आप कॉल करके उन्हें मेरे बारे में बता दें। पार्थ ने कॉल कट कर दिया था। उसके कॉल रखते ही इशिका अंदर आ गई थी। उसके हाथ में एक फ़ाइल थी। इशिका को देखते ही पार्थ ने काफ़ी रूडली कहा, किसी की बातें इस तरह छुपकर सुनना अच्छी बात नहीं है डॉक्टर अनामिका। इस तरह किसी पर कॉल पर चिल्लाना भी अच्छा कहाँ होता है डॉक्टर रायचंद। बाय द वे, डॉक्टर अनामिका की पहचान सिर्फ लोगों के लिए है, मेरी टीम मेंबर्स मुझे मिस सिंघानिया ही कहते हैं, इशिका ने वहाँ बैठते हुए कहा। उसके बाद इशिका ने वो फाइल खोलकर पार्थ के सामने रख दी। वो कुछ पॉइंट्स की तरफ इशारा करके बोली, आप श्योर हैं कि आपकी ये मेडिसिन लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी? जहाँ तक मैंने प्रोजेक्ट को पढ़ा है, इससे साफ है कि इस तरह की मेडिसिन लोगों को अडिक्ट कर सकती है, और ये एक खतरनाक ड्रग से भी बुरा असर दिखा सकती है। इशिका को अब कारण समझ आ गया था कि डॉक्टर पार्थ रायचंद का प्रोजेक्ट क्यों रिजेक्ट किया गया था। उसकी सजेस्ट की हुई दवाइयाँ भले ही लोगों को दर्द महसूस ना होने दें, लेकिन एक बार उनकी आदत होने के बाद वो उन्हें छोड़ नहीं सकते थे, और उन्हें किसी ड्रग की तरह उसकी लत लग जाती, जो धीरे धीरे अंदर से उन्हें खोखला कर देती। जब कोई चीज़ आपको आपके दर्द से निजात दे रहा है, तो वो आपके लिए कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो किसी अमृत से कम नहीं होती डॉक्टर अनामिका। कभी सोचा है कि सर्जरी के वक्त इतना एनेस्थीजिया क्यों दिया जाता है कि पेशेंट को एक डेढ़ दिन तक होश तक नहीं आता और उन्हें दर्द का एहसास भी नहीं होता? एनेस्थीजिया देने में और किसी तरह के ड्रग से अडिक्ट करने में फ़र्क होता है डॉक्टर रायचंद। अगर सर्जरी के वक्त पेशेंट होश में रहें तो वो दर्द से मर भी सकते हैं, इशिका ने अपना पॉइंट रखा। बिना सर्जरी के भी कुछ लोग काफ़ी दर्द फील करते हैं, मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं, इसी वजह से मैंने इस तरह की दवाई बनाने का डिसीजन लिया। अब आप ये बताइए कि आप इसमें मेरी कोई हेल्प करेंगी या नहीं, पार्थ ने सीधे सीधे कहा। इशिका ने एक पल उसे देखा और फिर ना में सिर हिलाकर कहा, मेरी उस वक्त भी ना थी और आज भी मैं हाँ नहीं कहने वाली। मैं इस तरह का जहर बनाने के लिए कभी रिसर्च नहीं करने वाली हूँ। आपकी मर्जी, फिर अपने हस्बैंड के साथ उम्र भर इस हॉस्पिटल में रहने के लिए तैयार हो जाइए डॉक्टर अनामिका, पार्थ ने सर्दअंदाज में कहा। तो अब आप मुझे ब्लैकमेल करेंगे, इशिका ने सार्कास्टिकली मुस्कुराकर कहा। अफकोर्स करूंगा, तुम अपना वादा करके मुकर नहीं सकती। अगर मैंने तुम्हारे पति को बचाया नहीं होता तो वो ठीक नहीं होता, पार्थ ने जवाब दिया। इशिका ने गहरी सांस लेकर छोड़ी। वो पार्थ से बहस नहीं करना चाहती थी, उसे अभिमन्यु को यहाँ से सेफली लेकर निकलना था। इशिका ने कुछ पल सोचा और फिर वो पार्थ से बोली, मैं आपके हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए तैयार हूँ, मैं इन मेडिसिन्स पर रिसर्च नहीं कर पाऊंगी, इसके अलावा आप कुछ भी करवा सकती हूँ। कुछ भी क्या, पार्थ ने भौहें उठाकर पूछा। फिर वो कुछ पल रुककर रहस्यमय अंदाज में बोला, ठीक है फिर, अपने पति को डिवोर्स देकर मुझसे शादी कर लीजिए डॉक्टर अनामिका। पार्थ की बात सुनकर इशिका गुस्से में खड़ी हुई और अपने दोनों हाथ टेबल पर पटकते हुए बोली, ये क्या बकवास है डॉक्टर रायचंद, क्या आप अपने पेशेंट से इसी तरह पेश आते हैं, उनके सामने उल्टी सीधी डिमांड करते हैं और पूरी नहीं होने पर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं? गुस्सा मत होइए, मैं तो बस आपके कुछ भी करने का जवाब दे रहा था। आप मेरे सिर्फ एक ही काम आ सकती हैं डॉक्टर अनामिका, और वो है इन मेडिसिन्स को बनाना। अगर आप रिसर्च नहीं करेंगी तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा, पार्थ ने सामान्य तरीके से जवाब दिया, जिस पर इशिका का गुस्सा ठंडा हो गया था। इशिका आगे कुछ कहती उससे पहले पार्थ बोला, मैं डिस्चार्ज पेपर तैयार करवा दूंगा, हॉस्पिटल का हेलीकॉप्टर आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें सारी मेडिकल फैसिलिटी होगी। पार्थ काफी अजीब था, कहाँ वो इशिका को रोकने के लिए उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था, तो अब वही उसके लिए जाने के सारे इंतजाम कर रहा था। इशिका हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। पार्थ ने उसकी नजरों को समझते हुए गहरी सांस लेकर कहा, कम ऑन, अब मुझे इस तरह मत देखिए, मैं कोई ब्लैकमेलर या किडनैपर नहीं हूँ जो आपके पति को यहाँ रखूंगा। वैसे वादा करके आपने काफी निराश किया है मुझे डॉक्टर अनामिका। थैंक्स फॉर योर सर्विसेज डॉक्टर रायचंद, हम बिल और डोनेशन दोनों पे कर देंगे। इशिका ने बातचीत को वहीं खत्म किया और वहां से बाहर जाने लगी। इशिका दरवाजे के पास पहुंची थी कि तभी पार्थ ने तेज आवाज में कहा, जिंदगी रही तो फिर जरूर मिलेंगी मिस सिंघानिया। इशिका ने पलटकर पार्थ की तरफ देखा और जवाब में कहा, उम्मीद है हम दोनों की जिंदगी लंबी होगी डॉक्टर रायचंद, लेकिन हम कभी नहीं मिलने वाले। इतना कहकर इशिका वहां से चली गई। वहीं पार्थ के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कुराहट थी। इशिका पार्थ के केबिन से अभिमन्यु के पास पहुंची तो अभिमन्यु इस वक्त केशव से बात कर रहा था। अभिमन्यु की सर्जरी को लगभग 5 दिन बीत चुके थे, उसे ठीक होने में टाइम लगा था, पर हाँ वो इम्प्रूव कर रहा था। अंदर आने से पहले इशिका ने गहरी सांस ली ताकि वो पार्थ का गुस्सा उनमें से किसी और पर ना निकाले। अंदर आते हुए इशिका ने गहरी सांस ली और हल्का मुस्कुराते हुए अभिमन्यु से कहा, मैं डॉक्टर रायचंद से बात कर ली है,
उन्होंने हमारे जाने के सारे अरेंजमेंट करवा दिए हैं, बस डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और जो भी बिल वगैरह है वो पे करके चलते हैं। ऐशिका की बात सुनकर अचानक केशव के मुंह से निकला, लेकिन तुमने तो कहा था कि उसका प्रोजेक्ट करने में टाइम लगेगा, क्या तुमने इतनी जल्दी उसका प्रोजेक्ट कम्प्लीट कर लिया या फिर तुम गोवा जाने के बाद सब करने वाली हो? ऐशिका ने इशारे से केशव को शांत रहने के लिए कहा, लेकिन अभिमन्यु ने उनकी बातों को पकड़ लिया था। उसने ऐशिका की तरफ देखकर हैरानी से पूछा, कैसा प्रोजेक्ट? लिसन, जो भी है यही खत्म कर दो, मैं नहीं चाहता कि तुम स्ट्रेस लो। कुछ खास नहीं था डॉक्टर रायचंद, मुझे एक रिसर्च करवाना चाहते थे, प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से नहीं था तो मैंने मना कर दिया, ऐशिका ने अपनी सफाई में कहा। अभिमन्यु ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, वो उसकी बातों से कन्विंस हो गया था। जैसा कि पार्थ ने कहा था, उसने अगले 2 घंटे में उनके जाने की सारी तैयारी करवा दी थी। कुछ ही देर में ऐशिका और अभिमन्यु चले गए थे। जाने से पहले ऐशिका ने एक बार फिर डॉक्टर रायचंद को थैंक यू बोला। पार्थ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो उन्हें बाय करने के लिए थोड़ा दूर खड़ा हुआ था। जब हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी तो पार्थ ने कॉल पर कहा, मेरे जाने की सारी तैयारी करती है ना, मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे पहले गोवा पहुँचूँ। जी सर, सब कुछ तैयार है, सामने से आवाज आई। ऐसा लग रहा था पार्थ आसानी से ऐशिका को छोड़ने वाला नहीं था। उसने तुरंत फ्लाइट ली और वो गोवा जाने के लिए निकल गया।
आप में से किसी ने कहा था कि पार्थ को नेगेटिव मत दिखाना, तो आपको बता दूं कि पार्थ नया विलेन है और अब तक का सबसे दमदार विलेन साबित होने वाला है। उससे जुड़ा हुआ सस्पेंस आपको 1-2 चैप्टर में पता चल जाएगा। चलिए, पढ़कर रेटिंग और कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको अपनी दूसरी कहानी का प्रोमो दे रही हूँ, उसे भी पढ़कर देखिए। उसके डेली 2 चैप्टर आते हैं, आपको अच्छी लगेगी वो कहानी। स्टोरी आपको गोल्डन ट्रैप ऑफ बिलियनेयर के नाम से मिल जाएगी। रात काफ़ी हो चुकी थी और बाहर हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। इन सब के बीच क्लब के एक VIP रूम में कमरे में सारी लाइट्स चालू थीं। रात के अंधेरे में भी उस कमरे में दिन जैसा उजाला था। कमरे के फर्श पर चारों तरफ कपड़े बिखरे हुए थे और बेड पर एक लड़का और लड़की एक दूसरे से लिपटे हुए थे। दोनों के ही शरीर पर कपड़े नहीं थे। वो आर्यांश कपूर था और बेड पर उसके नीचे दीवा सोई हुई थी। वो पूरी तरह होश में नहीं थी, लेकिन जो भी हो रहा था उसे महसूस कर सकती थी। दीवा नशे में इतनी मदहोश थी कि इस वक्त वो उसका पूरा साथ दे रही थी। मुंबई का मोस्ट एलिजिबल बैचलर, जो दिखने में इतना हैंडसम और परफेक्ट था कि हर लड़की उसे पाना चाहती थी, वो इस वक्त दीवा गोयंका के साथ बेड पर अपनी हसरतें पूरी कर रहा था। अचानक किस ब्रेक करके आर्यांश ने अपनी गहरी काली आंखों से दीवा की तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार के बजाय कुछ और ही था, एक जुनून, नफ़रत, या यूं कहें दीवा को ख़त्म करने की एक ज़िद, या शायद वो उसे हासिल करना चाहता था। बेड पर भले ही दीवा हो, लेकिन आर्यांश के दिमाग में कोई और थी। अगले ही पल वो अपने ख्यालों से बाहर आया और फिर से दीवा पर टूट पड़ा। देर रात तक उस कमरे में दीवा की सिसकियां गूंज रही थी। बाहर बारिश तेज होने लगी थी और कमरे का माहौल उस हिसाब से और भी रोमांटिक था। अगली सुबह काफ़ी देर तक दीवा उस बेड पर लेटी रही। जब उसकी आंख खुली तो उसका सिर बहुत भारी हो रहा था। दीवा के पूरे शरीर में, खासकर पैरों में, इतना दर्द हो रहा था कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। दीवा ने अधखुली आंखों से इधर उधर देखा। ऐसे लग रहा था कि वो आदमी अभी भी उसके पास है। उसकी वो गहरी काली आंखें दीवा कभी नहीं भूल सकती थी। दीवा ने अपनी आंखें बंद करके याद करने की कोशिश की तो उसे थोड़ा बहुत याद आ रहा था, और इसी के साथ उसकी आंखें नम होने लगी। वो समझ गई थी कि कल रात उसके साथ क्या हुआ था। जो भी उस कमरे में था वो उस शख्स से पहली बार मिली थी, उसे पहली बार महसूस किया था। दीवा ने जल्दी से आंखें खोली तो वहां कमरे में कोई नहीं था। अचानक दीवा की नज़र बेड की दूसरी तरफ गई तो वहां बेड साइड पर 500 के नोट की 4 गड्डियां रखी थी। दीवा ने उन्हें देखकर कड़वाहट से कहा, तो ये कीमत लगाई है उसने मेरी।